मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान कल अपने छठवीं गाथा पर चर्चा की थी, थोड़ी चर्चा सातवीं गाथा पर भी की थी। वास्तव में ये दोनों गाथाएं एक साथ ही अर्थ करने लायक है और इनकी टीका भी दो दो पंक्तियों की संक्षेप में एक ही विषय को दोहराती है। मंगलाचरण के अंत में आचार्य देव ने जब समय सार में एक गाथा में मंगलाचरण किया तब भी आधी गाथा माने दूसरी पंक्ति में वो छामी समय पाहोड़ मृणमोय सोय केवली भणियम ऐसा कहकर प्रतिज्ञा वाक्य दोहरा दिया। नमस्कार करने के लिए तो एक ही लाइन रखी, पंक्ति रखी कि बंदित्व शब्द सिद्ध है और सिद्ध के तीन विशेषण बता दिए, ध्रुवमचल अनुभवम गयम प्रति। लेकिन यहां पांच गाथाओं के अंत में भी ये नहीं कहा कि मैं क्या कहूंगा, बल्कि ये कहा कि मैं उस साम भाव रूपी आश्रम को प्राप्त होता हूं। इसमें ऐसा भ्रम खड़ा होता है कि ऐसे कुंदकुंदाचार्य का भी कोई आश्रम था और बहुत बढ़िया आश्रम चलता होगा। वो जमाना था कि जब जैनेतर मतों में मठ चलते थे और उनके अनुकरण पर जैनों में भी मठों की स्थापना होने लगी थी, तो कोई ये न समझ ले, जब अमृतचंदाचार्य का काल आया ना हजार वर्ष पहले, तब शंकराचार्य के मठ बन गए थे, तो उन्होंने कहा कि वो मठ और कुछ नहीं है, आत्मा का जो साम्य भाव है, दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये ही मठ है। इसी आश्रम को वो प्राप्त हुए, वे कोई लौकिक आश्रम सुख सुविधाओं वाले नहीं, वो तो कहते हैं मैं दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त होता हूं। फिर सबसे पहले प्रश्न खड़ा हुआ कि जिस आश्रम को आप प्राप्त होते हो, साम्य भाव को प्राप्त होते हो, उससे मिलेगा क्या? ये कल ही कहा था कि व्यापारी समाज है जैन समाज, ये हमें इससे क्या लाभ होगा, इसका नक्की किए बिना वो एक कदम आगे नहीं बढ़ता, और इसलिए समझाने वाले भी उसे पहले ही बताते हैं कि ये व्यापार करोगे तो तुम्हें ये लाभ होगा। तो उन्होंने कहा कि उसे मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन जगत में जीव ऐसे भी होते हैं ना कि मोक्ष तो ठीक है, वो तो अंत में मिल जाएगा, जब मिलेगा मिल जाएगा, पर हमने सुना कि पांचवें काल में तो मोक्ष होता ही नहीं है, और क्या मिलेगा? उन्होंने कहा चक्रवर्ती हो जाओगे, इंद्र हो जाओगे, असुरेंद्र हो जाओगे। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि ये उसी चीज से मोक्ष भी प्राप्त होगा और उसी से इस संसार के भोग सामग्री भी प्राप्त होगी। जरा विचार तो करो, अपन को ये सुन करके मुंह में पानी आ जाता है, चक्रवर्ती हो जाएंगे, इंद्र हो जाएंगे, लेकिन ये सब मिलेगा क्या? कैसा चक्रवर्ती हो जाओगे ना, तो अभी तो आपको पता नहीं है 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, चक्रवर्ती का मतलब कितनी कितनी 96,000 शादियां और कितना कितना वैभव होगा, तुम्हें उसकी कल्पना नहीं है, वो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो कहते इस सब का एक नाम क्या है जैन धर्म में? इनको एक नाम से कहें तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे परिग्रह। ये सब परिग्रह ही तो है ना, और भोग सामग्री तो है ना, सब मजा आएगा, फिर भोगेंगे वो सब सुविधा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो मजा आएगा ना, तो मजा आना ये क्या है? कि संसार के पांच इंद्रियों के विषयों में मजा आना ये क्या चीज है, तो कहते परिग्रह, परिग्रह है ये, और परिग्रह मिलेगा, पांच इंद्रियों के विषय भोग मिलेंगे और उन्हें भोगेंगे तो पाप बनेगा, और पाप बनेगा तो नरक जाएगा। तो ये तो एक बीच में आड़त देके नरक में जाने की बात हो गई ना। कहने में चक्रवर्ती तो सब मोक्ष जाते हैं, उन्होंने भी लिखा कि मोक्ष जाएंगे इन पदों को भोग करके, लेकिन इन भगवों को भोग करके जाएंगे कि छोड़कर जाएंगे, भोगना छोड़कर जाएंगे वो मोक्ष में कि भोगते भोगते जाएंगे, कि भोग कर जाएंगे, कि भोग के जाना शर्त है कि जब तक तुम इनको पहले भोग के आओ, जैसे जनेता दर्शनों में कहते हैं मालूम कि अपुत्रस्य गतिर नास्ति, जिसके बच्चा नहीं होता है उसे मोक्ष नहीं मिलता। सुना कभी अपुत्रस्य गतिर नास्ति, गति गति नहीं है मानो मोक्ष की तरफ, धर्म की तरफ उसकी गति नहीं है। तो शंकराचार्य जब संन्यास लेने लगे तो उनके गुरु ने मना कर दिया कि हम तुम्हें संन्यास नहीं दे सकते हैं, क्यों, पहले जाओ गृहस्थ अवस्था में रहो, शादी करो, बाल बच्चे पैदा करो, पुत्र पैदा करो, फिर उसको घर गृहस्थी में व्यवस्थित जमा दो, आजीविका से लगा दो, तो फिर तुम दीक्षा लेने आओ तो हम तुम्हें दीक्षा देंगे। हमें हंसी आती है, लेकिन ये वो जमाना था कि जब जैन और बौद्ध साधुओं का इतना जोर का प्रचार था कि जो भी उनके व्याख्यान में जाता था, बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी, वो सब दीक्षा ले लेते थे, ब्रह्मचारी हो जाते थे। तो धीरे धीरे उन लोगों का ये कहना है जो लोग अपुत्र से गति नहीं कहते हैं कि अच्छी नस्ल तो बंद हो गई पैदा होना, और अब ये गरीब भूखे ना समझ ऐसे नीची जाति वाले नीचे वो वाले ये लोग संतान पैदा करते रहते थे, तो असली नस्ल तो खत्म हो गई और ये हिंदुस्तान में ये ऐसे लोग बचे गए। इसलिए पहले जो बुद्धिमान लोग हैं जो दीक्षा लेकर के देश का कल्याण, समाज का कल्याण करना चाहते हैं, पहले संतान पैदा करके आए, यानी उस वजह से आज कहते ना इतने मुसलमान कहते हमें तुम ज्यादा संतान पैदा करो, और तो तुम लोग भी कहने लग गए हो कि संतान ज्यादा पैदा करो, भले इतने डर के मारे नहीं कहते हो लेकिन अंदर में तो ये अंदर ये बात चलती है कि नहीं चलती है कि ऐसे नस्ल खत्म नहीं हो जाए, अच्छे लोगों की संतान पैदा हो। तो इसलिए वो कहते थे अपुत्र से गति नास्ती, जो अच्छे अच्छे राजकुमार होते थे सब दीक्षा ले लेते थे, अच्छे अच्छे सेठों के बच्चे होते थे दीक्षा ले लेते थे, पढ़ते थे वो दीक्षा ले लेते थे, तो उनकी आगे नस्ल बढ़ती नहीं थी। वे कहते थे अपुत्र से गति नास्ती। तो लेकिन हमारे पीछे तो 10-20-50 वर्ष का संकट खड़ा हो गया, पहले बच्चा पैदा करो, फिर वो बड़ा हो, फिर उसे पढ़ाओ लिखाओ, फिर आजीविका से लगाओ, और जब वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए, तुम्हारी अपेक्षा नहीं रहे, तो धीरे धीरे तुम वानप्रस्थ आश्रम लेकर के दीक्षा लो, फिर तुम बाद में लो। ये उन्होंने आश्रम व्यवस्था बनाई थी जिसे आज भी पसंद किया जा रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूं इसके पीछे तर्क है, उसके पीछे लोगों का थिंकिंग है, लेकिन वो थिंकिंग मुक्ति के मार्ग का नहीं है। संसार कैसा बसा रहे, संसार कैसे फलता फूलता रहे, तो इसी की व्यवस्था है ना। हम तो संसार बसा नहीं, हमारा संसार उजड़ जाए, हम तो उस वो लोग हैं ना आश्रम वाले जैसे बोलते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं। तो शंकराचार्य को किसी ज्योतिषी ने बताया था कि बहुत जल्दी चले जाएंगे, 32 वर्ष की उम्र में चले गए। तो वो कहते मैं इतना करूंगा तब तक संन्यास के लिए मेरे पास कुछ समय भी बचेगा, और उन्होंने विद्रोह करके वो संन्यास लिया था। तो हमारे ऐसे अच्छे अच्छे लोग चले जाते हैं, इस बात का संघर्ष उस वक्त बहुत तेजी से था, वो एक तरह शंकराचार्य के विरुद्ध ही था, आज भले ही शंकराचार्य को पसंद कर रहे हैं, वो जितना पंडित वर्ग जो आज वो आज जो ये कहता है कि नहीं तुम संतान पैदा करके आओ, वो उस दिन भी कहता था, वो शंकराचार्य के विरुद्ध था। वो शंकराचार्य के प्रभाव की वजह से बाद में उनके अनुकूल हो गया हो वो एक अलग बात है ना। तो इसलिए ये कहते हैं कि वो आश्रम ऐसा आश्रम नहीं था, उनने आश्रम बना लिए थे। वे कहते धर्म बाल्य ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, चार आश्रम बना लिए थे ना, वो जनेतरों में थे। तो कोई कुन्नकुन्नाचार्य की इस बात को वो आश्रम से न समझ ले। अब कहते हैं कि ये जो समभाव समता भाव जो है वो आश्रम है और उसको मैं प्राप्त होता हूं तो उससे क्या मिलेगा। तो उन्होंने दो ही चीजें बताई। तो इसलिए आपको खुश करने के लिए नहीं बताई कि आप ये कहोगे कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो संसार का सुख चाहिए। तो अच्छा चलो तुम्हें संसार का सुख वाला रास्ता बता देते हैं, इन्हें मोक्ष चाहिए तो इन्हें मोक्ष। ऐसा नहीं है, वो तो वस्तु की स्थिति बता रहे कि चारित्र दो प्रकार का होता है। ये रास्ता निकाला उन्होंने टीका में, एक सराग चारित्र और एक वितराग चारित्र। तो जब सराग चारित्र होगा तो ये स्वर्गाधिक के पद मिलेंगे, चक्रवर्ती आदि के पद मिलेंगे, और जब वितराग चारित्र होगा तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसमें से तुम जो चाहो वो लो, ऐसी बात नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि वो सराग चारित्र कैसा है, उदाहरण दिया था मैं कल इसमें तुम्हारी पंक्ति में, क्या तप्त घी का दिया था, कह दिया वैभव क्लेश रूपो बंधु, क्लेश रूप है वो आनंद रूप नहीं है। इसी समय सार में लिखा है कि जैसे अपन पूरी तलते हैं ना, तो गरम गरम घी में तो पूरी डालते हैं तो एकदम वो नाचने लगती है, तो फूल के कुप्पा हो जाती है, एकदम गोल 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 हो जाती है, तो कितनी खुश हो रही होगी। तो फूल के कुप्पा हो गई और नाच रही है। तो ये जगत के जीव नाचते हुए तुम्हें दिखाई देते हैं और फूल के कुप्पा हो गए हैं, तुम समझते बहुत सुखी हैं। वो कहते हैं उस पुड़ी से पूछो जो खोलती हुई तप्त घी में जो उबल रही है, उस पुड़ी से पूछो वो कितनी सुखी है। ऐसे संसार के सुख में जो जीव भोग रहे हैं उनसे पूछो वो कितने आकुल व्याकुल हैं। और उनने उदाहरण वो चक्रवर्तियों के देवेंद्र वगैरह के दिए कि नहीं तर इतनी सामग्री वो क्यों जोड़ते। तो इस तरह से वो कहते हैं कि वो, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि एक जीव को पहले तो शर्त लगा दी कि दर्शन ज्ञान से सहित होना चाहिए। तो सम्मा दर्शन सम्यक ज्ञान सहित चारित्र होगा, यदि वो सराग चारित्र होगा तो स्वर्गाधिक मिलेंगे, और वितराग चारित्र होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो निपटारा हो गया ना। लेकिन वो फिर तुमको ऐसा नहीं समझ लो कि तुमको जो चाहिए तो हमें तो ये चाहिए, ऐसा नहीं। यदि ये तो दुख है इसलिए सराग चारित्र हे है, ये चारित्र यहां छोड़ने के लिए बताया जा रहा है, इसको तुम अपनाओ जीवन में, इसके लिए ये दो भेद नहीं बताए। तो फिर तो क्या है दिलीप भाई कहते, ये तो होते हैं दो, चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन हो और तेरहवें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है और चौदहवें गुणस्थान के अंत में मोक्ष जाता है जीव। तो जो चौथे से चौदहवें तक का जो काल बीतेगा उसमें तो वो रहेगा ना, तो उसमें यदि वो सीधा तो अंतर्मुहूर्त में मोक्ष ही हो जाता है, यदि वो वितराग चारित्र हो जाए अंतर्मुहूर्त तक लगातार तो सीधा मोक्ष हो जाता है, और मोक्ष हुआ नहीं। चक्रवर्ती हैं जो तीन तीन भव पहले सम्मदृष्टि हो गए थे, अरे उसी भव में है तो लाखों वर्ष बाद से सम्मान दर्शन होने के बाद में मोक्ष होगा, तो इतने काल तक क्या रहेगा? सदुपयोग नहीं रहेगा तो सदुपयोग रहेगा, तो सदुपयोग के फल में ये चीज की प्राप्ति होगी। माने उसका बता रहे हैं जो हम जो साम्य भाव को प्राप्त होंगे उससे चक्रवात चक्रवर्ती आदि का वैभव भी प्राप्त होगा और उससे मोक्ष भी होगा। इससे एक बात यह सिद्ध होती है कि चक्रवर्ती आदि के वैभव रूप उत्कृष्ट जाति के जो पुण्य हैं ये सम्य विष्णुओं के ही होते हैं। रत्न साहब का चार में आपने पढ़ा, कल निकाल के बताए थे ना, मुझे अपन ने छंद बुलवाए थे ना कल, के सम्यक दृष्टि विशिष्ट रिद्धिधारी मानव होते हैं और देवता होते हैं, फिर उच्च कोटि के इंद्रादिक होते हैं, फिर चक्रवर्ती होते हैं, फिर तीर्थंकर होते हैं और फिर मोक्ष चले जाते हैं। मान इतना काल संसार में वे अधिक से अधिक रह सकते हैं। भगवान महावीर की जीवनी भी पढ़ो तो वे त्रिपृष्ण नाम के नारायण हुए, एक चक्रवर्ती भी हुए हैं, तो ये हुए हैं, सिर्फ ये बता रहे। तो ये वो जो साम्य भाव वितराग भाव रूप है उसके फल में नहीं हुए, उसकी प्रतिज्ञा ली थी और उसमें नहीं रह पाए, और साथ में जो राग हुआ वो उसका दंड है। ऐसा प्रशासन उपाय में लिखा ना, सुपयोग से ही अपराधा, सुपयोग का ही ये अपराध है। तो ये कल की गाथा का अपन ने सामान्य से उपसंहार किया, आज जो गाथा है चारित्रम खलित हम चारित पढ़ो भाई, ये लोग चरित्र नहीं मानते क्या? हम तो चरित्र मानते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि तुम जिस चरित्र को जिस यहां धर्म लिखा है वो चरित्र नहीं, तुम तो ये वृत उपवास आदि करके थोड़े एक टांग से खड़े हो गए कि इसको चरित्र मानकर तो उसका फल मान रहे हो। वे कहते उन्होंने भी साथ में परिभाषा भी की कि जिस चारित्र का फल साक्षात मोक्ष होता है, साक्षात जो धर्म है वो क्या है, मोह छोह विहीनो परिणामो अप्रणोहु समो। जो आत्मा का परिणाम मोह और क्षोभ से रहित है वो साक्षात धर्म है। मोह माने दर्शन मोह, दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, और क्षोभ माने राग द्वेष। 25 कसाएं क्या रह गया, 25 कसाएं और मिथ्यात्व, इनसे रहित जो आत्मा का परिणाम है, तो मिथ्यात्व से रहित सम्यक दर्शन है और 25 कसाओं से रहित समझिए ना सम्यक चारित्र है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित जो परिणाम है वो साक्षात धर्म है और वो चारित्र है। उस चारित्र की बात है जी, जिसको तुम वृत्तोपासादि करके थोड़ा बहुत बाहर से पालकर और अपने को चारित्रवान मान लिए हैं और सामने वालों को दूसरों को चारित्र से हीन मान लिया है, और वो भी क्रियाकांड भी कौन सा, सब धर्म में अपना अपना अलग अलग कुछ क्रियाकांड बना रखा है। वो हमारे धर्म में वही चारित्र नहीं है और तुम्हारे धर्म में वही चारित्र है। मेरे पास आज एक पत्र आया है दादा, उसमें ये बातें लिखी हैं कि वो कबीर का भी था तो कबीर का सच्चा है, कि ये सच्चा है कि उनका भी था, तो ऐसे बहुत बहुत वो सब लिखे, फलाना का था। मैंने इन सब के बारे में अपन को सोचना चाहिए, हमारा ही सच्चा है, ऐसे पक्षपात में अपन को नहीं पड़ जाना चाहिए। ऐसे 10-15 प्रश्न लिखे। मैंने कहा कहीं बिल्कुल ठिकाना नहीं है, कुछ भी निर्णय नहीं है, राग का धीतरागता का कोई निर्णय नहीं है, चारित्र क्या है अभी उनको वो ही अच्छा लगता है, समझ रहे ना। अगर मुसलमान भी खराब थोड़ी होते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात करते हैं, ये भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, बौद्ध भी करते हैं, फलाने भी करते हैं, और वो सर्वधर्म संभाव, महावीर का तो सर्वधर्म संभाव था, फिर सबको अच्छा कहते थे, अरे आज के जैनी आज के पंडित ऐसे हो गए हैं, बहुत 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 लिखा। और आपको मार्गदर्शन दीजिए और आप इसकी चिंता मत कीजिए कि लोग आपसे फिर आगम प्रमाण पूछेंगे, मैं तो आपके बच्चों को ही आगम प्रमाण मानूंगा, एक वापन को भी भगवान बना दिया क्या, बस आप मेरे इनके जवाब दे दीजिए। मैंने जवाब लिखा, क्या लिखा मैंने आपको, कि भाई साहब आपको अभी अंदर से बहुत धगस है धर्म क्या है इसको जानने की, और सबके करके इसकी खोज करने की बहुत अंदर से तीव्र इच्छा है ना, और उसके लिए आप अंदर से पुरुषार्थ भी काफी कर रहे हैं, उत्साह भी बहुत है, ये सब देख करके प्रसन्नता होती है, और मैं तो बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, मैं शब्द याद नहीं आ रहा, मैं तो वैसा आदमी हो गया हूं, मैं अपने निर्णय जो भी मुझे निर्णय करना था, सोचना था, समझना था, विचारना था, वो कर लिया है मैंने विचार, और विचार करके मैं एक निश्चिंत निर्णय पर पहुंच गया हूं। अब मुझे कुछ भी नया जानने का, नया सोचने की बिल्कुल भी भावना नहीं है, मेरा विचार नहीं है, अब मैं इस शांत भाव से इसमें ही रहना चाहता हूं। आप में उत्साह बहुत है, आप करिए इस काम को जो भी करना कर रहे हो, लेकिन यदि आप मेरे से सलाह मांग रहे हैं और आप तो वचन जैसा मानकर उसको आप मानोगे, तो मैं बिना मांगे ये सलाह देना चाहता हूं कि एक साल तक जो आपकी सारी खोज बंद कर दो और कुंद कुंदाचारी के शास्त्रों को आप पढ़ो और गहराई से समझने की सत्य मान के, ये नहीं कि इनकी हमें जांच करनी है, यही परम सत्य है, ऐसा मान के पढ़ो, तो मैंने वो सब शास्त्र उन्हें भेज दिए, बंडल का बंडल बना करके भेज दिए, एक करो तो ठीक है, नहीं तो आप अपने रास्ते पर लग ही रहे हो, बढ़िया है। अभी मेरे को इसमें ज्यादा बात करने का रस नहीं है, उत्साह नहीं है बात ज्यादा बात करने का, इतने अत्यंत विनयपूर्वक मैंने उनको मना कर दिया कि अभी आप मेरे से नहीं पूछें कुछ, क्योंकि मैं वहां से शुरू नहीं कर सकता क्या कि कबीर सही है कि कुंद कुंद सही है, दोनों ही संत हैं, वहां से शुरू नहीं कर सकता हूं। तो आज नए नए जो लोग हैं वो ऐसे पैदा होते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने कितना बहुत बड़ा ढेर सारा अभी तो आपके लिए काम है, मैंने इन सब में से निकालना है, अब मैं भी जहां पहुंच गया हूं वो अब मेरे को कुछ रहा नहीं है कहीं से निकालना करने का, मैं तो जो निकालना था वो निकाल चुका हूं, दोनों की बिल्कुल अलग अलग स्थिति हो गई है। एक वितराग भाव धर्म है, कुंद कुंद ने इतना कह दिया था, अमरचंद को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने उसमें भी ये लगाकर क्लेश रूप वैभव को भोगता है, तो चारित्र जो है वो कहते चारित्र कौन है, जब अपने अपने सबके अपने पास सर्टिफिकेट है, स्कूल में जाते हैं तो करेक्टर सर्टिफिकेट मिलते हैं ना, करेक्टर माने चरित्र, चरित्र माने चारित्र, इनका करेक्टर कैसा है, तेरे पास भी होंगे ना, सबके पास होंगे, ये सब चारित्र के धनी हैं, इनके पास उसका सर्टिफिकेट है, है? तो चारित्र क्या है न सर्टिफिकेट देने वाले को पता है न लेने वाले को पता है, मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वो वास्तव में चारित्र है। तो मोह क्या है, अभी बहुत लोग तो अभी इतनी माताएं बहने और सब हैं अपने यहां तो बहुत सब अभ्यासी हैं, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत लोग मेरे श्रोताओं में हिंदुस्तान भर में हैं कि जो जब मोह बोलते ही तो ये बाल बच्चों से प्यार करते हैं ना, तो इसको मोह बोलते हैं, बस तुम मोह में मत पढ़ो, तुम तो इन्हें पढ़ने भेज दो, इसको जयपुर भेज दो, वहां पढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मोह में मत पढ़ो, यानी वो तुम्हें यहां नहीं आने देते, और वो जो राग होता ना उसको वो मोह समझते हैं, तुम भी समझते हो शायद वहां पर कि मेरी मम्मी मोह में पड़ गई, एक वो अर्जुन भी मोह में पड़ गया था, जो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने इतना समझाया कि पूरी गीता लिख दी उसमें, वो भी अर्जुन मोह में पड़ गया था, क्या मोह हुआ था उसको कि ये सामने युद्ध में जो खड़े हैं ये सब मेरे भाई बन रहे हैं, तो ये तो सही बात थी ना, कौरव और पांडव तो भाई बन रहे थे ना, और इसलिए मैं इन्हें नहीं लड़ नहीं सकता, मैं इनसे मैं इनकी हिंसा नहीं कर सकता, तो ये मोह था कि मोह भंग हो गया, वैराग हो गया, अपने यहां जिसे वैराग्य कहते हैं गीता में उसे मोह कहते हैं, और श्री कृष्ण जी ने क्या समझाया मालूम आपको कि घबराओ मत, युद्ध के मैदान में कोई भाई कोई मामा कोई बाप कोई बहन बेटा कोई गुरु कोई शिष्य नहीं होते, युद्ध के मैदान में दो ही व्यक्ति होते हैं, वह शत्रु या मित्र, जो उधर खड़ा है वो शत्रु, जो इधर हमारे बगल में खड़ा है वो मित्र, बस सारे रिश्ते नहीं होते हैं, कहां तुम रिश्ते में पड़े हो, कोई किसी का नहीं है, फिर उन्हें पूरा कोई किसी का नहीं है, जितने आपकी 12 भावनाएं हैं पूरी पढ़ लो, जितना वैराग्य का वर्णन अपना है ना, कोई किसी का नहीं है, सुधारा हो न सीरी सस्वारत के, फिर सबका सब पढ़ लो, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, अच्छा कोई किसी का नहीं है तो अब क्या करें, चलो अपने अपने घर, नहीं लड़ो वो मार रहे हैं, क्यों कोई किसी का है ही नहीं, क्या बताऊं, तुम तो इसलिए मोह पैदा हो गया ना कि जी अपने ही भाई बनने से नहीं मानना, तो उन्हें कोई किसी का नहीं है समझाया तो यही, लेकिन अंत में निष्कर्ष निकाला कि मारो है? मैंने मेरे कहने का वो मोह शब्द के कितने अर्थ निकल जाएंगे, और यहां मालूम क्या कह रहे हैं मोह शब्द का अर्थ, मैं कल बता चुका हूं बहुत कुछ, इसलिए तुम लोगों से अपेक्षा करता हूं कि तुम लोग बिल्कुल सही समझ गए होगे, है ना, वो मोह माने ये पदार्थ मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोगता हूं, ऐसा मानना उसका नाम मोह है, बस इस मान्यता का नाम मोह है, वो आपके मन तक ही सीमित है, वो क्रिया में भी व्यक्त नहीं होती, वो वाणी में भी व्यक्त नहीं होती, वो तो मान्यता है ना, अपनापन माने अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़कर सारा जगत में अपनापन, इसका नाम मोह है, तो सारा जगत में कितने लोग हैं इसको मोह समझते हैं, मोह मोह बस, और फिर क्षोभ, क्षोभ माने राग द्वेष, 25 कसाएं वो क्षोभ है, और ये 25 कसाएं होना, तो कसाएं हम गुस्सा को कैसे समझते हैं, ये कसा है, कि 25 कसाओं के नाम तो तुम्हें मालूम है, फिर एक एक पे गंभीरता से विचार करो। और ये कहा है कि दसवें गुणस्थान तक कसाई होती है, अब वो कसाई को दसवें गुणस्थान में खोजो और तुम्हें मिल जाए उसको, वो भी कसाय है। अकेले जो इसे गुस्सा आ रहा तो इसे बहुत कसाय है, और ये तो बिल्कुल शांत है, इसे तो किसी से कसाय है ही नहीं, कसाय नहीं है इसे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो यहां कैसे है, तो मोक्ष में होना चाहिए था। निवोदिया के भी 23 कसाएं होती हैं और प्रगट में होती हैं। अभी 25 कसाएं सम्मदर्शन नहीं है तो 24 घंटा बिल्कुल उदय रूप है, मतलब ऐसा नहीं कि अंदर अंदर में शक्ति रूप होंगी, मंदोदय होगा जो तुम्हें इससे पता नहीं चलता बाहर से दिखाई देने में। लेकिन हरेक को अभी हमें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें भी आ रहा है, हास्य भी है, क्रोध भी है, मान भी है, ऐसा थोड़ी है ये होगी तो ये नहीं होगी, ये होगी, ये तो मंदता और तीव्रता की बात है। जब शास्त्रों में बताई हैं कि इतनी कसाएं हैं तो ऐसी थोड़ी बताएंगे कभी ये होगी कभी वो होगी, वो तो कभी मंद तीव्र होगी ये बात है, लेकिन कसाएं सब विद्यमान है। तो इनसे रहित जो आत्मा का परिणाम है वो उसका नाम धर्म है, उसका नाम चारित्र है, उसका नाम समता भाव है। उनने साथ में परिभाषा भी दी, अब हम उस परिभाषा को समझते ही नहीं है, वो चारित्र के नाम पर कुछ भी कोई भी क्रियाकांड, देह की क्रिया और वचन की क्रिया और मन की क्रिया, जबकि तो वो कहते हैं तीनों क्रियाएं तो जड़ की क्रिया है, ये तो पुद्गल जड़ है, मन भी जड़ है, वचन भी जड़ है, काया भी जड़ है, और हम इनमें कुछ करके उसे चारित्र मानते हैं, और उस चारित्र मानते हैं इस शरीर को तपाते हैं, धूप में बैठ जाते हैं और कहते हैं तपश्चर्या कर रहे, एक टांग से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तपश्चर्या कर रहे, और ऐसे भी होते हैं डंडा ले लेके ऐसे मारते हैं ना छड़े, क्या खून खून खच्चर हो जाते हैं और उसे भी तपश्चर्या करते हैं और सबको दिखाते हैं, जुलूस में निकलते हैं ऐसा पीट पीट के खून खच्चर शरीर होकर के, और कितना तपस्वी है देखो कितना तपस्वी है, एक आदमी एक टांग से खड़ा रहता है और बताते हैं एक टांग से खड़ा रहता है इतना 3 वर्ष से एक टांग से खड़ा है। हम गए थे एक ऐसे दर्शन करने तो वहां ऐसे दोनों तरफ डंडे लगे थे और डंडे पर दोनों इससे को ऐसा लगाया था और बस टांग ऊपर कर रहे थे ऐसे एक पैर से करे, अब वो सारा वो दिन हाथ में डाल दिया। वो तुम्हारे बच्चों के खेलने के होते हैं ना ऐसे लगा देते हैं, ऐसे उनके नाप से बनवा के लगवाए थे और उन पे वो रात में ऐसे ही सो जाते थे उसी पे ऐसे ही हाथ से और ऐसे ही करके सो जाते थे, और बस वो तपस्या हो रहे थे इतने दिनों से, इस शरीर की क्रिया की तपस्या हो रही थी है? कोई वाणी से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कोई काया से करते रहते हैं। मैं दक्षिण भारत में गया था, शांति कुमार तुम्हारे इधर एरिए में वो दो तीन एक गांव है, दो तीन गांव मैं भूल गया हूं, उधर वो मील है ना गन्ने का मील है उधर सब वो तुम्हारे ही पास में है सब, तो उन गांवों में एक में एक मुनिराज थे तो उनने 3 कमरे इतने बड़े बड़े कम से कम 15x15 के वैसे कागजों से ढेर लगा के भरे थे, ये महाराज ने लिखे, महाराज ने इतने शास्त्र लिखे कितने कि 3-4 कमरे 15x15 के ढेर लग के भरे थे, क्या लिखे कि बस नमोकार लिखते रहे, नमोकार मंत्र लिखते रहे, जैसे एक कागज उठाया नमोकार मंत्र लिखना शुरू किया, दूसरा तीसरी दफे होते होते कागज पूरा हो गया, तो फिर नमोकार मंत्र लिखते 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 फिर कागजों का बंडल हो गया, उन्होंने बांध के वहां रखवा दिया, दूसरे कागज लाए बाजार से गैस लिखते लिखते वो आप देख लो, और उन्होंने निकाल उठा उठा के बताया कि देखो साहब पूरे पूरे बिल्कुल लिखे हैं, कहीं खाली नहीं है ये सब, और इसमें धर्म हो रहा है, अब क्या बताएं। और आप समझाओ कुछ समझाना हो क्या समझा उस महाराज को। मैंने अभी इसलिए कहने की हिम्मत पड़ती है कि वो कोई ऐसी छिपी हुई चीज नहीं थी। उस गांव वाले वे सब लोगों को लाला करके दिखाते थे। रावजी भाई का गांव था ना, है? कौन सा सुनाई नहीं दिया मुझे कुछ भी हो, लेकिन वो जो अपने मोती वो गांधी जी एम के गांधी थे ना, लंदन वाले आते थे उनका गांव, वो सब उन गांवों की बात है। कब गया था भगवान महावीर के 2500 निर्वाण वर्ष में, सन 74 में, तब मैंने देखा था। तो इसको इसको चरित्र मान ले, इससे मोक्ष हो जाएगा। लेकिन चरित्र मोक्ष होने के लिए इतना समय चाहिए ही नहीं। और करोड़ों वर्षों तक तब की बात कही थी ना, जैसे करोड़ों वर्षों तक करना ही नहीं, इतना ज्यादा करने की बात ही कहां है। वहां तो काल भी अंतर्मुहूर्त है और काम भी सिर्फ इतना सा है कि उपयोग बाहर से जाकर के अंदर में त्रिकाली ध्रुवात्मा पे जाए, जाए माने जाने और जानता रहे बस, इतना सा है नाम था। इसमें टांग ऊपी करने की नीचे करने की कहां जरूरत है, ये 10 उपवास की 20 उपवास की कहां जरूरत है, बता मुझे। तुमने तो शास्त्र अभी पढ़ रहे देख रहे ना, 3-3, 4-4 साल हो गया, तुम्हें अंदर से लगता कि नहीं लगता कि हमारे कहने की बात है, हमारा हमारा कोई प्रेशर है तुम पे, कोई दबाव है कि तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे पास ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और मानोगे तो हम तुमको ये पुरस्कार दे देंगे, नौकरी लगवा देंगे, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं, हम तो तुम्हारी शक्ल जानते तक नहीं है, हम तो तुम्हें पहचाने नहीं। स्मारक के बाहर में लो तो तुम्हें पहचानेंगे नहीं, और स्मारक में कौन सा पहचान लेंगे। नहीं सच बोलता हूं, अरे हम क्यों इतना उपयोग स्थिर करें, स्थिर करें तो इधर करें ना, बाहर में हम इतना उपयोग स्थिर क्यों करें, नहीं करते हैं। तो उनको क्या लेना देना है इससे करके, कभी धर्म तो इतना सा है, चारित्र तो इतना सा है, सबसे बड़ा तप तप है ना ध्यान, जिसके अंतर्मुहूर्त करने से केवल ज्ञान होता है। अब करोड़ों वर्ष का काम कहां है, मेरी समझ में नहीं आता, कोर्स कहां है? ये तो एवं चेत एवं स्यात में भी 5 वर्ष लग जाते हैं, नहीं तो वो पुद्गल जीव हो जाएगा, नहीं तो जीव पुद्गल हो जाएगा, नहीं तो जीव हो जाएगा। अरे कोई कुछ होने वाला नहीं है, वो आचार्यों ने बताया है कि तुम इस दिन से भेद विज्ञान नहीं करोगे तो इनका तो तादात्म्य संबंध, जिसका जो होता है उसके साथ तादात्म्य संबंध होता है, तो उसके साथ तादात्म्य संबंध उसका नहीं है, पुद्गल के साथ जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। ये देह पुद्गल की बनी हुई है, इसलिए देह का ऐसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब एक क्षेत्र में रहते हैं, तीसरी बात है, और धर्म करने के लिए क्या कहना, देह छोड़ना है कि नहीं, देह नहीं छोड़ना, कि घर छोड़ना, कि घर नहीं घबराना नहीं, बस ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, यही छोड़ना है। ऐसा तुमको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों? एक किसी का राज था और राज्य का तुम्हें कुछ नहीं कहना साहब, तुमको तो सिर्फ इतना कहना है कि ये राज्य मेरा नहीं है, ये भारत गवर्नमेंट सरकार को मैं देता हूं, ये उनका हो गया, इतना ही कहना है। इतना मुंह से बोल दो, इतना मान लो, बस खत्म, और आपको कुछ नहीं करना है। तो क्या बात करते हो, कुछ करना नहीं है, ये तो सब कुछ लुट जाऊं मैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कुछ नहीं करना है। अब यहां अपने धर्म के मामले में और सरलता है, मालूम क्या कह रहा हूं, जो तुम्हारा वास्तव में नहीं है, समझना, वो तो उनका राजा साहब का राज था, इसलिए शयन करने से उनका राज जाता था, तुम्हारा व्यवहार से भी नहीं है, सारे हिंदुस्तान में एक इंच जमीन नहीं है अपने नाम की, मान लो एक कमरा घर नहीं है, बस अब बस वही मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये मान लो, इसमें पसीना छूट रहा है, इसमें क्या है, बोलो कितना सरल है धर्म, कहां क्रियाधीन है। भगवान महावीर ने जो तपश्चर्या की वो क्या किया, कौन सी तपश्चर्या की, पैरों में छाले पड़ गए तो पैरों को मोक्ष होगा, कुछ नहीं है। ये वास्तव में धर्म है। तो इस धर्म को हम जब तक नहीं समझेंगे गहराई से, कौन सा मोहक खोह बीणो परिणामो अपनो ही समो, ये नमोकार मंत्र जैसा पढ़ने लायक पंक्ति है ना। ये जो चार पंक्तियां हैं ना अभी अपन पढ़ रहे हैं, मेरा तो इनमें से चित्त ही नहीं हट रहा है। तीन चार दिन से मेरे दिमाग में यही घूम रहे 24 घंटे मोहक खोह बीणो। एक जगह एक गाथा और ऐसी है जिसमें एक पंक्ति हूबहू है, अष्टपहाड़ में है वो गाथा, भाव पहाड़ में, मोहक खोह बीणो परिणामो अपनो हू समो है ना। यहां समो नहीं है, समो की जगह कुछ और है, बस बाकी पूरी की गाथा ऐसी की ऐसी है। देखो ये लिखा कहां, स्वरूपे चरणम चारित्रम, समय हो गया है वैसे, कि अपने स्वरूप में लीन होना उसका नाम चारित्र है। लिखा क्लियर, उसका अर्थ क्या है तो अर्थ भी वही बता रहे, स्व समय प्रवृत्ति इत्यर्था, अपने आत्मा में प्रवृत्त होना ये अर्थ है इसका। तदैव वस्तु स्वभावत्वात् धर्मा, और वही वस्तु का स्वरूप है इसलिए यही धर्म है। शुद्ध चैतन्य प्रकाशनम, इसका अर्थ है शुद्ध चैतन्य का प्रकाशन होना, माने शुद्ध चैतन्य आत्मा अपने ज्ञान में आ जाए, बस इसका नाम धर्म। इसी का नाम सम्यक दर्शन, इसी का नाम सम्यक ज्ञान, इसी का नाम सम्यक चारित्र। और कहते हैं तथैव यथावस्थित आत्मगुणत्वात् साम्यम, और इसी को साम्य कहते हैं, इसी को चारित्र कहते हैं, इसी को मोह क्षोभ से रहित आत्म परिणाम कहते हैं, हैं? वो ही है मोह क्षोभ अत्यंत निर्विकारो जीव से परिणामा। तो धर्म तो जीव का परिणाम है। अभी गुरुदेव श्री ने इस पर इतना लिखा, एक ही वाक्य बार बार दोहराए जाते हैं कि ये हर चीज में ये देखो कि ये जीव का परिणाम है तो धर्म है, नहीं तो नहीं है। तो उन्होंने कहा ये उपवास तो देह की क्रिया है, तो ये धर्म नहीं है। एक जीव का परिणाम है ये दिखना चाहिए, जीव का परिणाम क्या है। जब तक जीव का परिणाम नहीं हो तो वो धर्म नहीं हो सकता। पहली शर्त है कि वो जीव का परिणाम होना चाहिए। अरे लगाते जाओ तुम, हर एक को कसौटी पे कसो। अब हर चढ़ा रहे वो जीव का परिणाम है, कहा हमारा मन लग गया था उसमें। अरे वो मन लगा था, वो जीव का परिणाम था, उसे धर्म कहो ना, तो इसे क्यों कहते हो। इसमें देह की क्रिया, राग की क्रिया, इस मन वचन काय की क्रिया, ये कोई धर्म नहीं है। मोह और क्षोभ से रहित जो जीव का परिणाम है वो धर्म है।